तो बात ये कर रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मोहरा आपके अखलाक हर वो चीज़ थी कि जिसको दुनिया में आज तक कोई कम्पीट नहीं कर सका, कोई मुकाबला नहीं कर सका। अगर आप चेहरे की बात कर लें तो आपसे प्यारा चेहरा किसी का नहीं था। आंखों की बात कर लें तो उससे खूबसूरत बात नहीं थी। अगर आप चाहें तो एक किताब है आयना नबूवत जमाल नबूवत, मैंने इसका काफ़ी हिस्सा पढ़ाया भी हुआ है सीरा सेशंस के साथ मिलाकर। आप खोले दारुसलाम की छपी हुई बड़ी खूबसूरत बुक है, कलर्ड पेजेस भी हैं और आप उसमें से जाके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं कि मुख्तलिफ लोग जब नबी सल्लम को मिलते थे तो बाद में जाकर आपके बारे में क्या कमेंट्स देते थे। आपका हाथ कोई छू लेता था तो कहता था कि ऐसा प्यारा रेशम मैंने कभी नहीं देखा होगा जितने नरम अल्लाह के नबी के हाथ थे। आपके चेहरे को देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदी थे और आपके बारे में बहुत कुछ गलत मलत सुन चुके थे, लेकिन आपका चेहरा देखकर कहने लगे ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। और उम्मे माबत जो कुफर पे थी, अभी इस्लाम नहीं आया था, लेकिन हिजरत मदीना के रास्ते में अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक थोड़ी देर के लिए उनके हुजरे में रुके और पूछा कुछ खाने को है, कुछ पीने को है, कहा घर में कहाँ होगा, फाकों का दौर था, खुश्की थी, ड्राउट था। कहा अच्छा ये बकरी, कहा देख लो इसके तो थन सूखे हुए, खाना ही नहीं इसको देते तो दूध कहाँ से मिले। कहा अच्छा अगर तुम इजाज़त दो तो हम इससे दूध धो लें, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं। कहा हमें क्या एतराज़ है। कहा बुलाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके थनों पे हाथ फेरा, अल्लाह की कुदरत से वहाँ दूध उतर गया। कहा बर्तन लेकर आओ। और वो बर्तन भरते गए, दूध भरते गए भरते गए, आपने पिया, अबू बकर ने पिया, उस औरत के घर के सारे बर्तनों को भर दिया गया। कहा और चाहिए, जितना था ले लिया। और उसके बाद दोबारा आपने अपने हाथ मुबारक उसके थनों पे लगाए तो दूध वैसे जैसे थन थे वैसे हो गए। आप तो ये कर, उसको कुछ नहीं पता कि आज मेरे घर में कौन चांद उतरा है, आज मेरे घर में कौन सी हस्ती आई है। तो बात कर रही थी कि जब वो नबी सलम चले गए तो बाद में उस औरत के हस्बैंड जो ये उम्मे माबत थी तो वो अबू माबत होंगे, माबत उनका बच्चा था, आए तो कहने लगे कि आज घर में खुशबू बड़ी है, क्या बात है, ये दूध कहाँ से आया। उस वक्त फिर उस अनपढ़ गांव की देहाती औरत ने जिसको कुछ भी अच्छा बोलना सुनना नहीं आता था, उसने इतने खूबसूरत लफ्जों में नबी सल्लम का नक्शा बयान किया कि आज भी सीरत की किताबों में जहां नबी सल्लम का हाल हुलिया बयान किया जाता है वहां उम्मे माबद का बयान किया हुआ हाल बयान किया जाता है। बाद में वो मुसलमान हो गई। वो कहती मुझे तो पता भी नहीं था। तो हमारे नबी तो ऐसे थे कि जिनको कोई एक बार देख लेता था तो दोबारा देखने की ख्वाहिश करता था, जिसका एक बार आपसे वास्ता पड़ जाता था तो लोग आपसे दोबारा मिलने की तमन्ना रखते थे। ज़ाहरी हुसन भी अल्लाह ने बहुत दिया था, रंग सफ़ेद चेहरा था, लंबी जुल्फें थी, काली आंखें थी। ये सारी बातें जो हैं ये इस वक्त मैं आपके सामने करूँ, लेकिन इसमें मेरे और आपके लिए सिर्फ खुशी के सिवा अमल की बात कोई नहीं होगी। हम आधा पौना घंटा अगर और भी लगा लेंगे तो आप भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आज आप सब इतनी दूर दूर से आए, इतनी मेहनत करके आए, तो आप लोगों ने इस सारे सिलसिले से जो अल्लाह के नबी सल्लम के ज़ाहरी हुसन की तारीफें सीखने की बात तो कोई ना पाई ना। ज़्यादा ज़्यादा हम यही कह सकते हैं अल्लाह तो हमें भी इतना खूबसूरत बना देता, लेकिन ये याद रखिए कि नबी सल्लम की खूबसूरती ने उनको जन्नत नहीं दिलाई। अगर अल्लाह के नबी सल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का सबसे आला मुकाम वसीला रखा है तो वो आपके ज़ाहरी हुसन की वजह से नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लम का वो किरदार और वो आपका मामला और वो दुश्मनों के साथ आपकी बेहतरीन तरीके की जो कोशिशें थी उसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लम ने आपको जन्नत दी। खूबसूरत अबू लहब भी बहुत था, आपका सगा चचा, उसका नाम अबू लहब नहीं था, अब्दुल उज़्ज़ा उसका नाम था, खुद को अब्दुल उज़्ज़ा यानी शिर्क वाला नाम है, उज़्ज़ा उनकी देवी थी, कह लीजिए उनका बुजुर्ग था कोई, उसके नाम पे नाम रखा। लेकिन असल उसको जब अबू लहब कहते हैं वो इसलिए कि उसका चेहरा सुर्ख और सफ़ेद था, ऐसे जिस चेहरे पे खून उतरा हुआ था, इसकी खूबसूरती की वजह से लोग उसको अबू लहब कहते थे। लेकिन आप देखिए वो वाहिद शख्स है पूरे कुरान में जिसका नाम लेकर अल्लाह सुबहान तला ने रुसवा किया, अल्लाह के नबी का कट्टर दुश्मन बन गया। बात ये कर रही थी कि नबी सल्लम के किरदार और अखलाक की लोग गवाहियां देते थे। आपके अंदर जवानी में भी वो आते नहीं थी जो अमूमन जवानों में होती हैं, राग रंग महफिल मौसीकी गाना बजाना आपने ये कभी किया ही नहीं, कभी गैर अल्लाह का ज़बीहा नहीं खाया, कभी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया, आपकी जवानी भी बेदाग थी। एक रात सोचा कि लोग शादियों पर ये जो महफिलें लगाते हैं ज़रा मैं भी तो देखूँ ये क्या होती हैं, आज रात मैं भी शादी में जाऊंगा। अल्लाह का हुक्म देखिए कि जब शाम का वक्त हुआ तो आंख लगने लगी, कहा अच्छा थोड़ी देर सो के उठ जाऊं फिर जाता हूँ, और जब आंख खोली तो दिन चढ़ चुका था। और अरबों का ये कल्चर था कि सारी सारी रात शादियों की महफिलें सजाते थे और सुबह के वक्त सो पड़ते थे, जब सो जाते थे। अल्लाह ने नबी को बचा लिया। तीन दफा कहते हैं कि ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी ने इरादा भी कर लिया कि चलो मैं जाता हूँ, लेकिन अल्लाह उनको बचा लिया। और अल्लाह सुब्हान तआला ऐसे ही बचा लेते हैं आज भी अपने नेक बंदों को। किस तरह से आपने अपने आप को रखा, आपकी सच्चाई की गवाहियां लोग देते थे सादिक और अमीन कहकर। आप सच्चे हैं और आप अमानतदार हैं। हिजरत की रात जब नबी सल्लम की जान लेने के लिए दुश्मनों ने घर के बाहर हिसार बांधा हुआ था, उस वक्त भी मक्का वालों की अमानतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, जिनके ऊपर आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीन बनाकर रखा कि आप मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद ये अमानतें वापस कर देना। कोई आज का होता कहता जा रहा हूँ इनके सताने पे, सारा माल भी इनका ले जाऊँ। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह के नबी सल्लम का किरदार एक मॉडल है। तीन दफा कुरान पाक में आते लकत का न लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए रसूल की सूरत में बेहतरीन उस्वा हसना रोल मॉडल है। नबी सल्लम तुम्हारे लिए एक मिसाल है कि तुम भी वैसे बनते जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे जरिए से इस्लाम कितना फैलता है। क्या आज मैं और आप इस दुनिया में इस सदी में रहने वाले लोगों में क्या इस बात का जज्बा और शौक है कि अल्लाह हमारे जरिए से इस्लाम को फैलाए? आज आप पूरी दुनिया पर जरा देखिए मुसलमानों की जो हालत है, जहां भी कोई जंग लगी होगी एक फरीक उसमें मुसलमान ही होगा, जहां भी कोई तकलीफें और परेशानियों के हालात होंगे वहां मुसलमान क्यों है? इसकी वजह यह कि आज हमने अपने नबी के तौर तरीकों को छोड़ दिया, आज हमने वो अखलाक छोड़ दिए। अभी आपने एक पोएम सुनी और आपको वो इसीलिए सुनाई गई थी कि आप और मैं जरा देखें कि अल्लाह के नबी ने लोगों के दिल कैसे जीते, खिदमत के जरिए जीते। ये जो आज कुछ लोगों का ख्याल है ना कि अल्लाह के नबी ने इस्लाम तलवार के जरिए फैलाया, तो ये गलत है। अल्लाह के नबी ने अखलाक के जरिए से इस्लाम फैलाया। एक बूढ़ी औरत जो आप ही के वजह से जा रही थी, देखिए जब लोगों को पता नहीं होता ना तो वो अच्छे लोगों के भी दुश्मन बन जाते हैं। नबी सल्लम ने चूंकि मक्का में रहते हुए अल्लाह का पैगाम दिया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहां थोड़ा सा मैं और आप बहुत तवज्जो से सोचें कि मेरे और आपके लिए अल्लाह के नबी मॉडल कैसे हैं। पूरा मुआशरा जहां अल्लाह के नबी रहते थे वो बुत परस्ती का गढ़ था, वो उस तौर पे बुत पूछते थे। आज बुतों को पूछने की कई मुख्तलिफ सूरतें मौजूद हैं, लेकिन क्या वो मुशरिक कहते थे खुद को या वो कुफार की बस्ती थी? नहीं, वो कौन थे? वो अपने दौर के मुसलमान थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। सबको थोड़ा सा तो पीछे से हिस्ट्री का मालूम ही है ना कि अल्लाह के नबी सल्लम की किसकी नस्ल से थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हजरत इस्माइल कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत इब्राहिम के कितने बेटे थे? दो, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का हजरत इसहाक। हजरत इसहाक के जरिए से यहूदी और नसरानी दो मजहब बन गए, उसको भी हमने इस वक्त छेड़ते। हजरत इस्माइल को बचपन में ही अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम ने मक्का की वादी में छोड़ दिया। सबको मारूफ वाक्या याद है, सूरह इब्राहिम में कुरान पाक में इसकी डिटेल्स भी मौजूद है। अब हुआ क्या कि हजरत इस्माइल जब बड़े हुए तो उन्होंने वहीं एक अरब औरत से शादी की। अब आप बताइए कि इस्माइल की नस्ल से जो कौम चली होगी वो कौन सी कौम होगी? मुसलमान थी ना। याद रखिए, बड़ा बड़ा सोच के लिख लीजिए अपने दिल की तख्तियों पे कि अल्लाह के नबी जिस कौम पे आए थे वो खुद को मुसलमान कहते थे, नमाज पढ़ते थे लेकिन उसकी जगह तालियां बजाते थे और सीटियां बजाते थे। आप सूरत अल अनफाल की आयत खोल लीजिए, वमा कान सलातुहुम इल्ला मुकान व तस्दिया। तरीके बदल दिए थे उन्होंने इबादत के, कैसे? ताकि विस्लिंग करते। आज भी कई लोग इबादत के नाम पे तालियां बजाते, कवालियां करते और वो सोचते हैं कि ये इबादत है। उनका दिल करता था कि दीन के अंदर जरा रंग रौनक हो, जरा चमक दमक वाला दीन हो, चुनाचे वो तालियां बजाते, सीटियां बजाते। फिर इसी तरह आप देखिए कि मक्का वाले हज भी करते थे, हज करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक भी कहते थे, लेकिन इसके आगे एक जुमला बढ़ा लेते थे के लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, के अल्लाह हम हाजिर हैं और तेरा कोई शरीक नहीं, हाँ मगर जिसको तू खुद अपना शरीक बनाए वो तेरा शरीक है, नऊज़ुबिल्लाह। یعنی مسلمان ہوتے ہوئے ان کے عقائد میں اس طرح سے غیر محسوس طریقے سے شرک شامل ہو گیا تھا جس کو وہ دین کے نام پہ کرتے تھے، ثواب کے نام پہ کرتے تھے، اجر کے نام پہ کرتے تھے، لیکن وہ ساری چیزیں اسلام سے بالکل میچ نہیں کرتی تھی۔ خانہ کعبہ میں جب طواف کرنے جاتے تو سارے کپڑے اتار دیتے اور صرف جسم پہ عورتیں چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی ہیں اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ کوئی پوچھتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہتے ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں نا، تو اللہ کے سامنے ہم بالکل بے لباس نیچرل ڈریس میں آئیں گے۔ دیکھیے شیطان کتنا ظالم ہے، کس طریقے سے لوگوں کو غلط کام سکھاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سود کو اتنا عام کر دیا اس دور میں انہوں نے کہ کوئی کام سود کے بغیر چلتا ہی نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، پیدا ہوتے ہی زندہ بیٹیوں کو مار دیتے، کیا سوچ کر کہ یہ بیٹیاں گھر میں ہوں گی تو ان کی وجہ سے داماد آئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم سے کھانا مانگیں گی۔ یعنی کیا قباحت تھی، کیا خرابی تھی جو اس دور کے مسلمانوں میں نہ آ چکی ہو جہاں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اسی طرح ان لوگوں نے کیا کیا کہ زبان سے کلمہ کیا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے لاکھ بار بھی پڑھ لیتے ہوں، لیکن ان کے عقیدے میں کیا آ چکا تھا کہ اللہ خود تو ایک ہی ہے لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے مددگار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، بالکل شروع دور کے نبیوں میں سے پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کب بھیجا؟ جب لوگوں میں شرک پھیلا۔ اور آپ کو پتہ کہ شرک، جس کو آج کے دور میں ہم کتنا برا سمجھتے ہیں، شرک کب پھیلا تھا؟ کہ بزرگ تھے، چند نیک لوگ تھے، ایک کا نام لات تھا، یعوق، یغوث، نصر، وت، یہ پانچ نام قرآن میں موجود ہیں، سورہ نوح کی آیتوں میں آپ جا کے دیکھیے گا۔ یہ نیک لوگ تھے، جیسے لات نام کا ایک نیک بڑا شخص تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، بہت نیکیاں کرتا تھا۔ اپنے وقت پہ اس کی موت آ گئی۔ جب موت آئی تو شیطان نے لوگوں کے پاس جا کر ان کے دل میں ڈالا کہ دیکھو کل تک اس کی نیکیوں کی وجہ سے تم اللہ کی عذابوں سے بچے ہوئے تھے، اب یہ فوت ہو گیا، اب یہ فوت ہو گیا تو اب کیا ہوگا کہ تم پہ اللہ کے عذاب آئیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تم بھی نیک ہو جاؤ۔ دیکھیے جب ایک بندہ نیک ہے، بزرگ ہے، اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، تو تم بھی وہ کام کرو، تمہیں بھی ملے گی۔ شیطان نے کیا ڈالا کہ دیکھو یہ نیک تھا، اس کی نیکی نے تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچایا ہوا تھا، اب تم مارے جاؤ گے۔ کہا اچھا اب کیا کریں؟ کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ اس کی شبیہ بناؤ۔ چوک اور کوئلہ جو اس وقت موجود تھی، کیسی ان کی شبیہیں بنا کے نا، جیسے بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، تو اپنے گھر میں رکھ لو، اس کی شبیہ کی برکت سے تمہارے اوپر عذاب نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو یہ کام اچھا لگا، شیطان ایسے کاموں کو خوبصورت کرتا ہے، لوگوں نے اس کی شبیہیں بنا کے رکھ لی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی رہا، اب وقت کے ساتھ وہ تصویریں مٹنے لگی۔ پھر اگلی نسل کے پاس شیطان آیا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ شبیہیں تو وقت کے ساتھ مٹ جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم پہ اللہ کی پکڑ آئے گی، کیونکہ تم گناہ کرتے ہو۔ تم ایسا کرو کہ اس دن کی شکلوں کے لکڑی یا پتھر کے بت بنا لو۔ بت بنا لیے کہ ذرا مضبوط ہو جائیں گے۔ اب وہ بت بنا کے کہیں گھر میں چھوڑ دیے۔ ایک آدھی نسل اور گزری، شیطان پھر ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو یہ گھر میں جو پڑے ہوئے کونوں کھدروں میں، تو تم ایسا کرو کہ ان کی تصویریں وہاں رکھ لو جہاں بیٹھ کے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، چلو برکت ہوگی۔ اگلی نسل نے ان کو پکڑ کے اپنے عبادت خانوں میں رکھنا شروع کر دیا۔ ایک آدھی نسل اور گزری تو شیطان نے آ کر پٹی پڑھائی کہ دیکھو یہ ادھر جو پڑا ہوا ہے، تو اس کو ایسا کرو سامنے رکھ لو، اور کہنا یہ کہ اللہ سے مانگنا ہے، بس اس بزرگ یا اس بت کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن دنیا میں شرک عام ہے۔